तफसीर सूरत फतह मदनी सूरत है। इसके 4 रुकू और 29 आयात हैं। अल्फाज और कलिमात की तादाद 568 है, 568। हुरूफ की तादाद 2555, 2555। फतह, फतह के लफ्जी मानी है बंदिश और पेचीदगी का जायल करना, किसी बंद चीज को खोलना। और फतह का लफ्ज हिस्सी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और मानवी तौर पर भी। हिस्सी तौर पर क्या है, जैसे महसूस करें कि आपको जैसे चीज नजर आ रही है, जैसे मुसलमानों के लिए फतुहात के दरवाजे खुलते चले गए, एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क, दूसरे मुल्क के बाद तीसरा मुल्क। और मानवी लिहाज से दिल का खोलना या सुलह हुदैबिया के नतीजे में फतेह मक्का का होना, ये जाहिरी तौर पर भी है और मानवी लिहाज से भी है। और अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया के जरिए इस्लाम की तरक्की और फतुहात के दरवाजे खोले। जाहिरी तौर पर अगर आप देखें तो सुलह हुदैबिया ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन मानवी तौर पर आप देखें कि सुलह हुदैबिया जो है वो दरअसल फतह है। और फतह का लफ्ज 4 दफा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नजूल सकीना, इसका जिक्र 3 जगह पे किया गया है। और सूरत फतह, इसका नाम अलफत है फतह, और पहली आयत के अल्फाज इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसे इसका नाम लिया गया है। ये नाम इस सूरत का नाम ही नहीं है बल्कि मजमून के लिहाज से भी इसका उन्वान है, क्योंकि नाम दो तरह के होते हैं, एक अलामती नाम होता है और एक ये होता है कि वो नाम इस्म बा मुसम्मा हो, के उसी नाम के गिर्द पूरी सूरत घूमती हो। तो अलामती नाम और कौन सी सूरतों का है, मसलन सूरत अल बकरा है ना, सूरत आल इमरान। अल बकरा गाय का जिक्र है, पूरी सूरत अल बकरा गाय के वाक्य के गिर्द नहीं घूमती, तो अलामती नाम है। हाँ, इसी तरह सूरत इब्राहिम, हालांकि और अंबिया का भी बीच में जिक्र है। तो बहरहाल, लेकिन सूरत यूसुफ को अगर आप देखें तो हजरत यूसुफ के गिर्द सूरत ज्यादातर घूमती है। इसी तरह सूरत फतह जो है, इसमें उस फतेह अजीम पर बात की गई है जो अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अता की थी। और इसका जमाना नजूल जो है ज़िलक़ादा 6 हिजरी में, ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का से सुलह हुदैबिया का मुआयदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस जा रहे थे। क्योंकि ये सूरत जो है, ये पूरी की पूरी सूरत जो है वो फतह अजीम पर बात करती है, उसके पस मंजर, उसके हालात, तो जरूरी है कि हम उन वाकयात को देखें जिन वाकयात के पस मंजर में ये सूरत नाजिल हुई। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ चुके हैं, है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ चुके हैं, और सहाबा जो थे वो मक्का से बहुत उदास रहते थे। सहाबा मक्का को और हरम को याद करते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने असहाब के साथ मक्का तशरीफ लेके गया हूं, मक्का गया हूं और वहां उमरा अदा किया है। और आपको ये बात पता ही है कि पैगंबर का ख्वाब महज ख्वाब और ख्याल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वही की एक किस्म होता है, वही की एक शक्ल होता है। और अल्लाह ताला ने खुद ही इस सूरत में आप पढ़ेंगी आयत 27 में आगे जाकर खुद इसकी तौसीक कर दी कि ये ख्वाब हमने अपने रसूल को दिखाया था, हमने दिखाया था। तो दरहकीकत ये निरा ख्वाब नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा था, और उस इशारे पर अमल करना ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरी था। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा तो बजाहिर तो कोई मुमकिन शक्ल नजर नहीं आती थी। कुफारे कुरैश ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्ला का रास्ता बंद कर रखा था, और इस पूरी मुद्दत में मुसलमानों ने ना कोई हज किया था और ना ही उमरा। अब कैसे तवक्को की जा सकती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर जो है अगर मक्का में जाते हैं तो अहले मक्का आपको मक्का में दाखिल होने देंगे। और वैसे भी आप देखें कि अगर उमरे का अहराम बांध कर समाने जंग साथ लेकर जाते तो इसका मतलब है कि जंग की दावत दी जा रही है, और अगर बगैर समाने जंग के जाएं सिर्फ अहराम पहनकर तो इसका मतलब है कि अपने आप को जो है वो खतरे में डालना है। हालात सारे आप अपने जहन में रखें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये बात बड़ी अहम थी कि इन हालात में जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जो हुक्म है उस पर अमल कैसे करें और क्या करें, और पैगंबर का मनसब क्या होता है कि अल्लाह जो हुक्म दे बेखटके उस पर अमल कर गुजरे, बेखटके उस पर अमल कर गुजरे और वो अमल बजा लाए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब अपने सहाबा को सुनाया और बिला तामुल सहाबा ने सफर की तैयारी करनी शुरू कर दी। आसपास के कबाइल में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम कराया कि हम उमरे के लिए जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वो आ जाए। अब आप देखिए कि जिन लोगों की निगाहें जो थी वो जाहिरी असबाब पर थी, जाहिरी तौर पर आप हालात को देखें तो कुछ ऐसे लोग थे जो जाहिरी हालात को देख रहे थे तो उन्हें यूं महसूस हुआ गोया कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। कि अगर जैसे ऐलान तो आम कर दिया गया तो अब लोग कुछ लोग ऐसे थे जो ये महसूस करने लगे कि ये लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, और उनमें से तो कोई भी आपके साथ चलने पर तैयार ना हुआ, ये बद्दू थे और वैसे भी जैसे निफाक था जिनके दिलों में, बिगन था, मगर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान रखते थे उन्हें इस बात की कोई परवाह ना थी कि अंजाम क्या होगा। इनके लिए बस ये काफी था कि अल्लाह का इशारा है और इसका रसूल तामीले हुक्म के लिए उठ खड़ा हुआ। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उठ खड़े हुए तो सहाबा को कोई चीज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करने से रोक नहीं सकती थी। आप सोचें, आप जरा अपने आप को इस जगह पे लाएं, मैं अपने आप को इस जगह पे लाऊं, उमरा हज इबादत बड़ी अहम बात है, बड़ा शौक होता है, लेकिन अगर ऐसे मसाइल हो, इतनी परेशानी हो और जाहिरी तौर पर खौफ और खतरात में घिरा हुआ माहौल हो तो फिर उसमें क्या सोचते हैं आप होते इस जगह या मैं होती जगह, हम क्या करते। बहरहाल आप देखें कि जो सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए तैयार हुए इनकी तादाद 1400 थी, तकरीबन 1400, और इन सहाबा ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में जो है वो सफर किया। ज़िलक़ादा 6 हिजरी के आगाज में ये मुबारक काफिला मदीना से रवाना हुआ। ज़ुल हलीफा जो है ये जगह मदीना से मक्का की जानिब तकरीबन 6 मील के फासले पर है, और अब इसे बेरे अली कहते हैं, और मदीना के हाजी इसी मकाम से हज और उमरे का एहराम बांधते हैं। तो ज़ुल हलीफा के मकाम पर पहुंचकर सबने उमरे का एहराम बांधा, कुर्बानी के लिए 70 ऊंट साथ लिए जिनकी गर्दनों में हदी की अलामत के तौर पर कलादे पड़े हुए थे, वो जो पट्टा सा होता है ना, पर्तलों में सिर्फ एक एक तलवार रख ली जिसकी तमाम ज़ायरीन हरम को अरब के मारूफ कायदे के मुताबिक इजाजत थी। अरब के लोग जब उमरे के लिए जाते थे ना, एक एक तलवार से भी अपने पास रखते थे, अंदर रख लेते थे, उनका ये अंदाज था क्योंकि हालात और सफर जो थे उस वजह से। अब इसके सिवा मुसलमानों ने कोई सामान जंग ना लिया साथ। इस तरह ये काफिला लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हुआ बैतुल्ला की तरफ चल दिया। उस वक्त मक्का और मदीना के ताल्लुकात की जो नौइयत थी, अरब का बच्चा बच्चा उसको जानता था। अभी पिछले साल ही तो क्या हुआ था, शवाल 5 हिजरी में कुरैश ने कबाइल अरब की मुत्तहिदा ताकत के साथ मदीने पर चढ़ाई की थी, और क्या कहते हैं उस गजवे को, गजवाए अहजाब के नाम से याद किया जाता है। तो अब आप सोचें कि एक साल पहले गजवा अहजाब हुआ है, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े काफले के साथ अपने खून के प्यासे दुश्मनों के घर की तरफ रवाना हुए। तो पूरे अरब की निगाहें इस अजीब सफर की तरफ मरकूज हो गईं और लोगों ने यह भी देख लिया कि यह काफला लड़ने के लिए नहीं जा रहा बल्कि माह हराम में एहराम बांधकर हदी के ऊंट साथ लिए हुए बैतुल्ला का तवाफ करने जा रहा है और कतई तौर पर गैर मुसल्ला है। कुरैश के लोगों ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इकदाम को देखा तो आपके इस इकदाम ने अहले मक्का को सख्त परेशानी में डाल दिया। ज़िलक़ादा का महीना उन हराम महीनों में से था जो सदा भर से कई सालों से हज और उमरे की ज़ियारत के लिए मोहतरम समझे जाते थे। इस महीने में जो काफला एहराम बांधकर हज या उमरे के लिए जा रहा हो उसे रोकने का किसी को हक ना था। हत्ता कि किसी कबीले से भी उसकी दुश्मनी हो तो अरब के कानून की रूह से वो अपने इलाके से इसके गुजरने में माने नहीं हो सकते थे, रुकावट नहीं डाल सकते थे। कुरैश के लोग इस उलझन में पड़ गए कि अगर हम मदीने के इस काफले पर हमला करके उसे मक्का मुअज्जमा में दाखिल होने से रोकते हैं तो पूरे मुल्क में शोर मच जाएगा, अरब का हर शख्स पुकार उठेगा कि यह सरासर ज्यादती है। तमाम कबाइल अरब ये समझेंगे कि हम खाना काबा के मालिक बन बैठे हैं। हर कबीला इस तशवीश में मुब्तला हो जाएगा कि आइंदा किसी को हज और उमरा करने देना या ना करने देना अब हमारी मर्जी पर मौकूफ है, जिससे हम नाराज होंगे। उसे बैतुल्ला की जियारत करने से इस तरह रोक देंगे जिस तरह आज मदीने के इन जायरीन को रोक रहे हैं। ये एक ऐसी गलती होगी जिससे सारा अरब हमसे जो है वो मुनहरिफ हो जाएगा, दूर हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बड़े काफले के साथ बखैरियत अपने शहर में दाखिल होने देते हैं तो पूरे मुल्क में हमारी हवा उखड़ जाएगी और लोग कहेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूब हो गए हैं। तो दो बातें उनके सामने थी कि शामिल होने दें या ना होने दें। तो शामिल होने देने से हवा उखड़ जाएगी और लोग कहेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूब हो गए हैं, और अगर शामिल जो है वो ना होने दिया जाए तो लोग कहेंगे कि हमने सरासर ज्यादती की है। आखिरकार बड़े सोचने समझने के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद उनकी जो जहलाना हमीयत थी वही उन पर गालिब आकर रही और उन्होंने अपनी नाक की खातिर यह फैसला कर लिया कि किसी कीमत पर इस काफले को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी काब के एक शख्स को मुखबिर की हैसियत से आगे भेज रखा था ताकि वो कुरैश के इरादों और इनकी नकलो हरकत से आपको बरवक्त मुतला करता रहे। जब आप उस्मान पहुंचे, उस्मान जो है ये मकाम मदीना से मक्का के रास्ते पर, मक्का से तकरीबन 2 दिन की मुसाफत पर है। ऊंट की सवारी पर यहां से मक्का पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। जब आप उस्मान पहुंचे तो उसने आकर आपको इत्तला दी कि कुरैश के लोग पूरी तैयारी के साथ जीतवा के मुकाम पर पहुंच गए हैं। जीतवा कौन सी जगह है? मक्का से बाहर उस्मान के रास्ते पर एक जगह है। जीतवा के मुकाम पर पहुंच गए हैं और खालिद बिन वलीद को उन्होंने 200 सवारों के साथ कुराउल गमीम की तरफ आगे भेज दिया है। कुराउल गमीम जो है ये उस्मान से 8 मील के फासले पर मक्का की तरफ की एक जगह है ताकि वो आपका रास्ता रोकें। कुरैश की चाल ये थी कि किसी ना किसी तरह रसूल अल्लाह के साथियों से छेड़छाड़ करके उन्हें इश्तियाल दिलाएं, गुस्सा दिलाएं और फिर अगर लड़ाई हो जाए तो पूरे मुल्क में ये मशहूर कर दें कि ये लोग दरअसल आए थे लड़ने के लिए मगर उन्होंने बहाना किया था उमरे का और महज एहराम तो धोखा देने के लिए बांधा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला पाते ही फौरन रास्ता बदल दिया और एक नहायत दुश्वार गुजार रास्ते से सख्त मुशक्कत उठाकर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए। ये जो हुदैबिया है ये मकाम जद्दा से मक्का जाने वाली सड़क पर ठीक उस जगह वाकया है जहां से हुदूद हरम शुरू होती है, हरम का इलाका था। अब इसे शमैसी कहते हैं। मक्का से इसका फासला तकरीबन 13 मील है। तो आपने जो है वो आप वहां पे पहुंच गए और ये जगह जो थी ऐन हरम की सरहद पर वाकया थी। यहां बनी खुजा का सरदार बुदैल बिन वरका अपने कबीले के चंद आदमियों के साथ आपके पास आया और इसने पूछा आप किस गर्ज کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے, صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے. یہی بات ان لوگوں نے جا کر قریش کے سرداروں کو بتائی اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا راستہ نہ روکے, مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. اور انہوں نے احابیش کے سردار, احابیش کسے کہتے ہیں؟ احابیش جو ہے یہ اطراف مکہ میں رہنے والے چند قبائل کا مجموعہ تھا, احابیش, جس سے قریش کے حلیفانہ تعلقات تھے. تو احابیش سے پھر مراد کیا ہے کہ مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان کا مجموعہ تھا. تو اب جو ہے اہل مکہ نے احابیش کے سردار حلیث بن علقمہ کو حضور کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کرے. سرداران قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو کر پلٹے گا. اور پھر احابیش کی پوری طاقت ہمارے ساتھ ہوگی, ارد گرد جو علاقے تھے قبائل کے تو ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. مگر جب اس نے آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے, حدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, تو وہ حضور سے کوئی بات کیے بغیر مکہ کی طرف پلٹ گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ آ رہا تھا نا سردار حلیث بن علقمہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو اونٹ ہے نا, کتنے اونٹ ساتھ ہے جو لے کے جاتے؟ 70. آپ نے کہا کہ اس کے سامنے سے اونٹوں کو گزارا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ اونٹوں کو گزارا جائے, اور اونٹ جو 70 تھے حدی کی علامت کے طور پر قلادے بھی پڑے ہوئے تھے, اور اس کا اونٹوں کا منظر اور سارے صحابہ نے جو احرام باندھا ہوا ہے, تو اس منظر نے اس کے دل پر بڑا نقش کیا, بڑا اثر ڈالا. اور کوئی بات بھی نہیں رسول اللہ سے, کیونکہ ظاہری طور پر پوری بات یہ نظر آ رہی تھی کہ جنگ کے لیے نہیں آئے. تو بات کیے بغیر وہ مکہ کی طرف پلٹ گیا, اور اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا. اور میں سوچ رہی تھی, جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور اندیش تھے, کتنے معاملہ فہم تھے, اور کیسی انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی نا کہ اونٹ ہے تو کہا کہ سب کو لے کر اس کے سامنے سے گزارا جائے, اور دیکھتے ہی اونٹوں کو اور صحابہ کے احرام کو اس کے اوپر کیسا بہترین اثر ہوا نا. اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں, اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش اس کام میں تمہارا ساتھ نہ دیں گے. ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں بنے کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم تمہاری حمایت کریں. اچھا, اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کون کون ان کے پاس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بدیل بن ورقہ, پھر احابیش کا سردار حلیث بن علقمہ, پھر اس کے بعد اب قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے اس کو بھیجا, اور وہ آیا اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر رسول اللہ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ جائیں, مگر آپ نے اس کو وہی جواب دیا جو بنی خزا کے سردار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فریضہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں. اب عروہ نے بھی قریش کے لوگوں کو جا کر کہا کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں, مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے, ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا. ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں. اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے. اب اس دوران کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایلچیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ رہی ہے, اور خاص طور پر اہل مکہ کی طرف سے ایلچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا معاملہ ہے, اور کوشش اہل مکہ کی ایک ہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو غصہ دلائیں اور کسی طرح مسلمان کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ لڑائی کا بہانہ سامنے آ جائے. مگر ہر مرتبہ صحابہ کا صبر اور ضبط کرنا, تحمل کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست इससे जो है वो क्या हुआ कि अहले मक्का की सारी तदबीरें जो थी वो नाकाम हो गई। एक दफा इनके 40-50 आदमी रात के वक्त आए और मुसलमानों के पड़ाव पर पत्थरों और तीर बरसाने लगे। सहाबा ने इन सबको गिरफ्तार करके हुजूर के सामने पेश कर दिया, मगर आपने इन सबको छोड़ दिया। एक और मौका पर तनीम की तरफ से 80 आदमी ऐन नमाज फजर के वक्त आए और उन्होंने छापा मार दिया। ये लोग भी पकड़े गए मगर हुजूर ने उन्हें भी रिहा कर दिया। और तनीम कौन सी जगह है? ये मक्का के करीब हदूद हरम से बाहर एक मकाम है। मक्का के लोग बिलअमूम उम्रे करने की खातिर इसी मकाम पर जाकर एहराम बांधते हैं, फिर वापस आकर उम्रा अदा करते हैं। अब हुआ क्या, आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से हजरत किसको भेजा? उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को एलची बनाकर मक्का भेजा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को क्यों भेजा? अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी थे, और भी बड़े बड़े सहाबा थे। तो आपने किसको भेजा? आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को जो है वो भेजा। और भेजने का मकसद क्या था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो कुरैश में से थे, मुहाजरीन में से थे, और वैसे तो दूसरे सहाबा भी बहुत से मुहाजरीन में से थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का जो मर्तबा और मकाम और जो उनकी शान शौकत थी, तो इस वजह से उनको भेजा। और इनके जरिए से सरदारा ने कुरैश को यह पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि जियारत के लिए हदी के साथ जानवर साथ लाए हैं, तवाफ और कुर्बानी करके वापस चले जाएंगे। मगर वो लोग ना माने और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मक्का ही में रोक लिया। अब इस दौरान ये खबर भी मशहूर हो गई, किसी तरह उड़ गई, कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु कत्ल कर दिए गए। और इनके वापस ना आने से मुसलमानों को ये यकीन हो गया कि खबर सच्ची है। अब मजीद तहमुल का कोई मौका ना था। मक्का में दाखिले की बात तो दूसरी, अब जो है बात क्या थी कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीर जो है गोया कि उसको कत्ल कर दिया गया। तो अब मुसलमानों के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो जंग के लिए तैयार हो जाए। अब जरा सोचें कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर का मशहूर हो जाना, अब इस मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और इनसे इस बात पर बैत ली कि हम यहां से मरते दम तक पीछे ना हटेंगे। और आप देखें कि कोई हथियार भी पास नहीं है, तैयारी भी नहीं है, घर से भी दूर है, बस एक तलवार, वो तो हर हज और उमरा करने वाला भी उस जमाने में साथ रखता था, तो जैसे पूरी तैयारी के साथ आना। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैत कोई मामूली बैत नहीं थी और मुसलमान सिर्फ 1400 थे बगैर समाने जंग के, मरकज से 250 मील दूर। मरकज कौन सा था मुसलमानों का? मदीना, ऐन मक्का की सरहद पर, जहां दुश्मन पूरी ताकत पूरे सामान के साथ हमलावर हो सकता था और इर्गिर से भी कबाइल को अपने साथ मिला सकता था। एक शख्स के सिवा पूरे काफले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, एक शख्स के सिवा। और वो शख्स जो था वो कौन था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत ना की? जद बिन कैस एक शख्स था और उसने, उसके सिवा बाकी सब ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत कर ली। और आप देखिए कि सहाबा का बैत करना, और चूंकि खाली हाथ थे सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे थे और वहां पे जब आपने सहाबा ने बैत की तो अल्लाह ताला ने, अब सूरत फतह में आप पढ़ेंगी कि इनके ऊपर अल्लाह का हाथ था। आप मतलब तसव्वुर करें इस बात का कि गोया के आंखों देखे अपने आप को मौत के कुएं में या मौत के मुंह में जो था वो डालना था और बैत की, बैत रिजवान। जाहिरी तौर पर कुछ भी पास नहीं है, साजो सामान ताकत कुछ भी नहीं। अच्छा, जब ये बैत हो गई और ये बैत फिर किस नाम से मशहूर हुई? बैत रिजवान के नाम से। और अल्लाह ताला ने खुद ये बात कही कि लकद रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज युबायउनका तहत शजरा, और इनको सहाबा को जो है वो फिर किस नाम से याद किया जाता है कि वो सहाबा जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। तो ये वो सहाबा थे जो कि अल्लाह की खातिर अल्लाह की रजा के लिए जो है ये बैत करने वाले थे, और बैत इन्होंने दरख्त के नीचे की, तो इनको असाबे शजरा भी कहते हैं ना, है ना, कि ऐसे सहाबी जिन्होंने जैसे दरख्त के नीचे जो है वो बैत की है। और दूसरी बात यह है कि इस बैत को बैत रिजवान के नाम से याद किया जाता है। बाद में पता चला कि ये जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह नो की शहादत की खबर थी ये गलत है, और फिर कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अमर की क्यादत में एक वफ्त आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बातचीत करना चाही, और अहले मक्का की वो जो जिद थी और जो उनका इसरार था और वो यही था कि आप जो हैं वो इस साल जो है ना बस आप वापस चले जाएं। और ये जब उनकी तरफ से सुहैल बिन अमर आया तो उसने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवील गुफ्तगू के बाद चंद शराइत पर, जो शराइते सुलह हुदैबिया के नाम से याद की जाती हैं, जो है वो मुआयदा कर लिया। और वो शराइत क्या थी? शराइते सुलह हुदैबिया, नंबर एक, 10 साल तक फरीकैन के दरमियान जंग बंद रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ खुफिया या एलानिया कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर दो, इस दौरान कुरैश का जो शख्स अपने वली की इजाजत के बगैर भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा उसे आप वापस कर देंगे, और आपके साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास चला जाएगा उसे वो वापस नहीं करेंगे। तीसरी बात क्या थी? कबाइले अरब में से जो कबीला भी फरीकैन में से किसी एक का हलीफ बनकर इस मायदे में शामिल होना चाहेगा उसे इसका इख्तियार होगा। और फरीकैन कौन थे? एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, दूसरी तरफ अहले मक्का जो भी थे वो। फिर इसके बाद चौथी बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस जाएंगे बगैर उमरा किए, आइंदा साल वो उमरे के लिए आकर 3 दिन मक्का में ठहर सकते हैं और पर्तलों में सिर्फ एक एक तलवार लेकर आ सकते हैं और कोई सामान जंग साथ न लेकर आए। इन 3 दिनों में अहले मक्का उनके लिए शहर खाली कर देंगे ताकि कोई लड़ाई की सूरत पेश ना आए, मगर वापस जाते हुए वो यहां के किसी शख्स को अपने साथ ले जाने के लिए मजाज नहीं होंगे। और ये थी जो है वो चौथी शर्त। और अब आप देखिए कि सुलह हुदैबिया जो है, जब ये शराइत अभी तय की जा रही हैं और इन शराइत के तय होते वक्त आम सहाबा जो थे उन मसलियतों को समझ नहीं सकते थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर थी, और क्योंकि इस सुलह के नतीजे में एक अजीम इनकलाब आने वाला था, एक अजीम कामयाबी आने वाली थी, लेकिन जाहिरी तौर पर निगाहें उसको देख नहीं सकती थी। अब मुसलमान जो थे, जब उनके सामने ये शराइत आई तो मुसलमान बहुत परेशान थे कि ये जलील शराइत हम कैसे कबूल करें, और हम इतने मغلوب होकर जो है वो उनके साथ मुआयदा जो है वो क्यों करें, क्योंकि मुसलमान जो थे अब एक ताकत भी बन चुके थे। और इस सिलसिले में आप देखें कि ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, जो बड़े बालिगो नजर और मुदब्बिर थे, उनका हाल क्या था। ज़ैद बिन असलम अपने वाले से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर हुदैबिया में थे, सैयदना उमर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, रात का वक्त था, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा तो आपने जवाब ना दिया, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा तब भी आपने कोई जवाब ना दिया, फिर तीसरी बार पूछा तब भी आपने जवाब ना दिया, आखिर सैयदना उमर रजी अल्लाह नो अपने पे कहने लगे, तेरी माँ तुझ पर रोए, तूने 3 बार आजी के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी जवाब ना दिया। सैयदना उमर रजी अल्लाह नो कहते हैं, फिर मैंने अपने ऊंट को एड़ लगाई और लोगों से आगे निकल गया, मुझे खतरा था कि अब मेरे बारे में कुरान नाजिल होगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने एक पुकारने वाले की पुकार सुनी जो मुझे ही बुला रहा था, मैं डर गया, कि शायद मेरे बारे में कुरान उतरा है। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात मुझ पर एक सूरत उतरी है जो मुझे इन तमाम चीजों से ज्यादा पसंद है जिन तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ी। इसी तरह जो है हजरत अंस रजी अल्लाह ने फरमाते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना से मुराद सुलह हुदैबिया है, ये बुखारी की रवायत है और अभी जो आपको पहले सुनाई वो भी बुखारी की रवायत है। अच्छा फिर आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो जो थे जब ये सुलह हुदैबिया की शरायत जो थी इन पर बैत हो रही थी और इन पर एक एग्रीमेंट हो रहा था तो इन्होंने क्या किया था, कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में जो है शक पैदा हुआ, क्योंकि मुसलमान होने के बाद कभी मेरे दिल में शक नहीं पैदा हुआ था मगर इस मौके पर मैं महफूज ना रह सका, बेचैन होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के पास गए और कहा क्या हुजूर अल्लाह के रसूल नहीं हैं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं, क्या ये लोग मुशरिक नहीं हैं, फिर आखिर हम अपने दीन के मामले में ये जिल्लत क्यों इख्तियार करें। उन्होंने जवाब दिया ए उमर वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह हरगिज इनको जाया ना करेगा। अब आप देखें कि रसूल अल्लाह का बड़ा एहतराम, उनके पास नहीं गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कह रहे हैं ना, जैसे बाज़ वक़्त आपस में कहा जाए आगे जाके बात ना की जाए ना। अब जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का जवाब देखे कैसे सिद्दीक थे, एक जुमला एक बात भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से नहीं मिलती बल्कि आप क्या कर रहे हैं आप संभाल रहे हैं। फिर भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो संभल ना सके, उनसे सबर ना हुआ, यही सवालात जाकर खुद रसूल अल्लाह से भी किए और हुजूर ने भी उनको वैसा ही जवाब दिया जैसा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दिया था। बाद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु सारी जिंदगी मुद्दतों इस गुफ्तगु पर शर्मिंदा रहे जो इस मौके पर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी। और फिर क्या करते थे वो बाकी जिंदगी सदकात और नवाफिल अदा करते रहे ताकि अल्लाह ताला उन्हें माफ कर दे। सैयदना सहल बिन हनीफ कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे जब आपने मुशरिकीन मक्का से सुलह की, अगर हम लड़ना मुनासिब समझते तो लड़ सकते थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या हम हक पर और ये मुशरिक बातिल पर नहीं, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और इनके मकतूल दोजख में नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे तो फिर हम अपने दीन को क्यों जलील करें और ऐसे ही मदीने को चले जाएं जब तक कि अल्लाह हमारे और इनके दरमियान फैसला ना कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खत्ताब के बेटे रसूल मैं हूं, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पहले कर चुके हैं ना, कह चुके हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चुनाचे सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्से की हालत में लौट गए मगर करार ना आया। कहीं पता चलता है कि पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और यहाँ पे क्या है करार ना आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास आकर कहने लगे क्या हम हक पर और ये मुशरिक बातिल पर नहीं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया खत्ताब के बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं तुम नहीं, तुम नहीं को ब्रैकेट में लिखे और अल्लाह इन्हें कभी जाया नहीं करेगा। उस वक्त सूरत फतह नाजिल हुई। सैयदना अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं जिस दिन मक्का फतह हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत दोहरा दोहरा कर खुशलहानी से पढ़ रहे थे, अच्छी आवाज में पढ़ रहे थे। अब आप देखिए कि ये सुलहनामा की शरायत है जो भी आपने देखी और उस वक्त मुसलमानों की परेशानी और इस्तराब का हाल कैसा था कि उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसे मुदब्बिर जो थे और बहादुर जिनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था वो इस बात उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि जब अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा है और फिर हम ऐसे दब कर बगैर उमरा किए और शराइत भी ऐसी जो बड़ी ही इस्लाम को जलील करने वाली कि हम उनके आदमी वापस करें और वो हमारे वापस नहीं करेंगे, है ना। अगर मुसलमानों मक्का वालों में से कोई मुसलमान हो जाए तो मुसलमान ना साथ ले जा सकते हैं और ना ही जो है वो पास मुसलमान अपने रख सकते हैं। अब आप देखिए कि अब ये जो शराय थी इन पर मुआयदा हो रहा था और दो बातें मुसलमानों को खास तौर पर खल रही थी, और उसमें से वो दो बातें जो बहुत सी खल रही थी वो क्या थी? शर्त नंबर दो के मुसलमान तो साथी वापस कर देंगे, जो अहले मक्का से में अगर कोई मुसलमान हुआ मुसलमान वापस करेंगे, लेकिन आपके साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास चला जाएगा उसे वो वापस नहीं करेंगे। एक ये वाली शर्त, और दूसरी शर्त नंबर जो है वो ये वाली के जो शर्त नंबर चार थी कि मुसलमान ये समझ रहे थे कि इसे मानने के मानी ये हैं कि तमाम अरब के सामने गोया हम नाकाम होके वापस जा रहे हैं, और वो क्या शर्त थी कि उमरा किए बगैर मुसलमान इस दफा चले जाए ना, तो ये चीज भी उनको बड़ी बेचैन कर रही थी। और उनके दिलों में ये सवाल जो था वो खलश पैदा कर रहा था कि जब हुजूर ने ख्वाब देखा था कि हम मक्का में तवाफ कर रहे हैं तो यहां से तवाफ किए बगैर वापस हम चले जाएं और इनकी शर्त मान लें तो ये कैसी बात है ना। और आपको ये बात पता है कि ख्वाब में ये नहीं कहा गया था कि इसी साल आप उमरा करेंगे, लेकिन नबी का काम क्या होता है कि वही की जब शक्ल है ख्वाब तो फौरन अताअत करता है ना। अब वो भी, अब आप देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब देखा था कि सितारे और चांद और सूरज जो उनको सजदा कर रहे हैं, ये तो नहीं देखा था कि कब करेंगे, कि बाज़ औक़ात ख्वाब जल्दी पूरा हो सकता है वही जो है, बाज़ औक़ात बहुत अच्छे बात पूरी हो सकती है। अब जल्दी पर तेल का काम एक और वाकये ने किया, इसी दौरान ऐन उस वक्त जबकि मुआहिदा लिखा जा रहा था, सुहैल बिन अमर के अपने बेटे अबू जंदल मुसलमान हो चुके थे और वो कुफार की कैद में थे। उनको ना किसी तरह पता चल गया कि इस तरह रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ आए हुए हैं, और आप सोचिए कि कैद में हैं, जुल्म और सितम में हैं, किसी ना किसी तरह भाग कर और कैद से आजाद होकर वो रसूल अल्लाह के पास उस जगह पहुंच गए। आप देखें जरा बहादुरी दिलेरी, और मैं ये सोच रही थी कि जुल्म के सते हुए हैं और चाहते हैं कि उससे निकल आए, तो अब वहां पे पहुंचे। इनके पांव में बेड़ियां थी, जंजीरें, जिस्म पर जुल्म और सितम और तशद्दुद के निशान थे। उन्होंने हुजूर से फरियाद की कि मुझे इस कैद से निजात दिलाई जाए, सहाबाए कराम के लिए ये हालत देकर जब्त करना मुश्किल हो गया। अब सोचे एक तरफ वो शरायत, एक तरफ अभी लिखी जा रही है, फाइनल दस्तखत नहीं हुए क्योंकि लिखी गई है, दस्तखत नहीं हुए अभी। और अब जो है हजरत ये सहाबी जो के अबू जंदल थे ये आ चुके हैं, और सहाबा जो थे बहुत परेशान है, मगर सुहेल बिन अमर ने कहा सुले नामे की तहरीर चाहे मुकम्मल ना हुई हो, शरायत हमारे और आपके दरमियान तय हो चुकी है, दस्तखत बेशक नहीं हुए और इसलिए मेरे लड़के को मेरे हवाले किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुज्जत कबूल कर ली और अबू जंदल जालिमों के हवाले कर दिए गए। आप सोचिए कि यानी इनका आना और फिर इनको जो है वो वापस कर देना। और पता है उस वक्त हजरत अबू जंदल ने क्या किया? हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जख्म दिखा दिखा कर इल्तजा की कि इन्हें कुफार के हवाले न किया जाए, लेकिन मुसलमान ये चाहते थे कि हजरत अबू जंदल को पनाह दी जाए क्योंकि शरायत लिखी गई है, वायदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अबू जंदल का बाप डट गया कि नहीं, बात तय हो चुकी है, अब इसको वापस कर दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रजी अल्लाह को सबर की तलकीन की और उसे वापस कर दिया। और इसी तरह जो है वो अबू बसीर, ये भी एक सहाबी थे, अबू बसीर इस्लाम लाकर मदीना पहुंचे तो कुफार ने दो आदमी मदीना भेजे कि वो इन्हें वापस मक्का लाएं। क्यों कुफार ने भेजा? वायदा हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को इनके हमराह कर दिया। अबू बसीर कैसे सहाबी थे? बड़े बहादुर। उन्होंने क्या किया? वहां से तो वापस आ गए रसूल अल्लाह की अतात में, रास्ते में मौके मौका पाकर इन दो में से एक को कत्ल कर दिया और दूसरा फरार होकर मदीना आ गया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा सुनाया। इतने में पीछे पीछे अबू बसीर भी मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे इनके हमराह भेजकर अपना जिम्मा पूरा कर दिया, अब तो अल्लाह ने मुझे इनसे निजात दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की आग ना भड़काओ। जब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह को ये बात मालूम हुई कि आप इन्हें मदीने में नहीं रहने देंगे, वायदे के मुताबिक मदीने में नहीं रहने देंगे, तो वहां से चलकर उन्होंने समंदर के किनारे पर आकर ना आप मकीम हो गए, मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह पे, कि मक्का जाना नहीं है अपनी हिफाजत खुद, और मदीना वालों ने कबूल नहीं करना मुआहदे के मुताबिक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैं सोचती हूँ कि कैसे हालात थे। अब हजरत अबू जंदल को ही पता चल गया कि इस तरह से अबू बसीर ने किया है ना, वो भी किसी तरह कैद से रहाई पाकर ना यहाँ पे पहुंच गए अबू बसीर के पास। मदीना नहीं गए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही उनको वापस कर चुके थे। इस तरह अब जो मुसलमान होने लगे वो मदीना की बजाय इधर का रुख करने लगे, और इनकी काफी बड़ी एक तादाद हो गई। इन लोगों ने कुरैश को इतना तंग किया, इतना तंग किया कि कुरैश ने मजबूर होकर मुसलमानों से कहा कि ये शर्त जो है ना इसको जो है ना वो कल आदम करार दिया जाता है, ये शर्त खत्म कर दी जाए कि अब हमारे पास से जो भी आपके पास चला जाए अब उसको आप वापस ना करें, अपने पास आप रखें। और एक दूसरी रवायत में आता है कि कुफार ने रसूलुल्लाह से दरख्वास्त की कि अबू बसीर को इन कामों से मना करें, और जो शख्स मुसलमान होकर मदीना जाना चाहे वो जा सकता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को लूट मार करने से मना कर दिया। तो इस तरह जो अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु की तदब्बुर बहादुरी से जो है वो तमाम जो न्यू मुस्लिम थे उनके लिए जो है वो एक रास्ता जो था वो खुल गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर के नाम एक खत लिखा कि मदीना आ जाएं। तो उस वक्त जो है वो जब खत मिला और ये लोग जो थे फिर वो मदीना जो थे वो चले गए। तो आप देख लें कि जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वादे के पाबंद थे। तो मायदा क्या था, एक वादा ही था ना। तो ये थे हालात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुआयदा कर लिया। अब मुआयदा करने के बाद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से कहा कि यहीं कुर्बानी करो, सर मंडाओ और अपने अहराम खोल दो, कोई भी अपनी जगह से ना हिला। तीन मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, और उस वक्त सहाबा पर रंज और गम और दिल शिकस्तगी की ऐसी कैफियत थी, ऐसा शदीद गलबा था कि सहाबा में से कोई भी अपनी जगह से ना उठा, हरकत तक ना की। और कहते हैं पूरे दौरे रिसालत में एक मौके के सिवा और कोई मौका ऐसा नहीं मिलता कि आप सहाबा को हुक्म दें और सहाबा आपके फरमान की अतात के लिए उठ ना खड़े हों। तो आपको इसका बहुत सख्त सदमा हुआ। इस सफर में आपके साथ कौन थी? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा। और आपका अंदाज क्या था सफर पे जाते हुए? आप कुरा डाला करते थे, तो हजरत उम्मे सलमा का नाम कुर्रे में निकला। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ना बड़ी इल्म दोस्त थी और बड़ी बहादुर और बड़ी ही तदब्बुर और हिकमत रखने वाली अजवाज मुतारात में से। आपने अपने खैमे में जाकर जब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से इस कैफियत का जिक्र किया तो उन्होंने अर्ज किया आप बस खामोशी के साथ तशरीफ ले जाकर खुद अपना ऊंट ज़िबा करें, हुजाम को बुलाकर अपना सर मंडवाएं और अहराम उतार दें। इसके बाद वो खुद ब खुद आपके अमल की पैरवी करेंगे और समझ लेंगे कि फैसला हो चुका है, अब ये बदलने वाला नहीं। चुनाचे आपने ऐसा ही किया, आपने कुर्बानी की, सर मंडवाया और या बाल तरशवाए अपने और अहराम से आप निकल आए। और बाकी सहाबा जो थे उनके दिल गम से कटे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फिर अब उन्होंने एक एक ने उठे और उन्होंने अहराम जो था उसको वो कैसे निकले कि उन्होंने भी जो है वो कुर्बानी की, फिर अपने बालों को मंडवाया या तरशवाया और उसके बाद जो थे वो भी अहराम से जो है वो निकल आए। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ जो हैं वो इसकी बातें हैं, मुख्तलिफ इसके वाकयात हैं। तो इस पसे मंजर में हम सूरत को आगे लेके चलेंगे, लेकिन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह की बात से क्या बात हमारे सामने आती है कि औरत बेहतरीन मशीर है। औरत के अंदर अकल की, समझ की, फहम की कमी नहीं है, और शौहरों को अपनी बीवियों से मशवरा करना चाहिए। कि किसी की ये बात बड़ी अहम है कि अगर कोई मशवरे के लिए ना मिले तो दीवार से भी मशवरा कर लो, सोचो बार बार और बात करो ना। तो असल बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की मुनासबत से जरूरत के मुताबिक मशवरा किया करते थे। तो आप अपनी अजवाज मोहतरात से भी मशवरा करते थे। हमें कई मौके हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भी मिलते हैं ना कि आपने उनसे मशवरा किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से जो है वो इस मौके पर मशवरा किया है। तो मशवरा करने में क्या है, खैर ही खैर है। तो आइए इस सूरत को जो है वो इन वाकयात के पसे मंजर में समझते हैं। सूरत फतहा आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको फतह दी, फतह खुली। तो ये फतह जो थी कैसी फतह थी कि ये फतह खुली थी, खुली फतह थी। और इस सिलसिले में आप ये बात भी याद रखें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सुलह हुदैबिया के बाद सहाबा को फतह की खुशखबरी सुनाई तो लोग हैरान थे कि आखिर इस सुलह को फतह कैसे कहा जाए। ईमान की बिना पर मान लिया जाए तो दूसरी बात है, मगर इस फतह में, इस सुलह हुदैबिया में फतह का कोई निशान नजर नहीं आ रहा, कोई पहलू समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने यह आयत सुनकर पूछा, यार रसूलुल्लाह क्या ये फतह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। एक और सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने भी यही सवाल किया तो आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यकीनन ये फतह है। मदीना पहुंचकर एक और साहब ने अपने साथियों से कहा, यह कैसी फतह है? हम बैतुल्लाह जाने से रोक दिए गए, हमारी कुर्बानी के ऊंट भी आगे ना जा सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया ही में रुक जाना पड़ा, और इस सुलह की बदौलत हमारे दो मजलूम भाइयों अबू जंदल और अबू बसीर को जालिमों के हवाले कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, बड़ी गलत बात कही गई है, हकीकत में तो ये बहुत बड़ी फतह है। अच्छा, अब जो है ये देखने की जरूरत है कि इसको अल्लाह ताला ने फतह मुबीन जो है वो क्यों कहा। तो फतह के क्या मानी हमारे सामने आए कि फतह के मानी होते हैं बंद को खोलना, कोई चीज बंद हो और उसको खोल दिया जाए, बंदिश जो है वो इसको ढीला कर दिया जाए। तो अब मुसलमान सुलह हुदैबिया के वक्त जो है अपने दिलों में गम को महसूस करते मदीने की तरफ वापस जा रहे थे जब ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत को कौन सी सूरत कहा जाता है? मदनी सूरत कहा जाता है। लेकिन मुसलमान मदीना में नहीं थे, फिर इसको मदनी सूरत क्यों कहा जाता है? आपको मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि सूरत नजूल के तबार से इनकी दो किस्में हैं, मक्की और मदनी। और मक्की और मदनी जब सूरत कहा जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि सूरत किस जगह पे नाजिल हुई, बल्कि जो है वो जमाना, वो सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, आप मक्का के अंदर थे या मक्का के बाहर, कहीं भी थे आप, वो सूरतें जो हैं वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। मक्का में आप कितनी देर हैं? 13 साल। और वो सूरतें जो कि हिजरत के बाद में नाजिल हुई मदनी दौर में, जो तकरीबन 10 साल का दौर है, आप मदीना के अंदर थे या मक्का में या किसी भी और जगह, तो वो सूरतें मदनी सूरतें कहलाती हैं। तो चूंकि आप हिजरत कर चुके थे तो सूरत फतह को मदनी सूरत कहा जाता है। और जो है वो रास्ते में थे, अब ये सूरत नाजिल हो गई। तो अब जो है कैसे पता चले कि ये सूरत जो है जब नाजिल हो गई तो पहली आयत क्या है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। कितना खूबसूरत अंदाज है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खुली फतह अता कर दी। तो ऐसी फतह है कि मुबीन, मुबीन का मतलब क्या होता है? लाजिम और मुतदी, लाजिम और मुतदी, कि खुद खुली है और मजीद जो है चीजों को वाजे करती चली जाएगी कि इस फतह के असरात सिर्फ इस तक नहीं है, और चीजों पर भी ये असर अंदाज जो है वो होने वाली है। तो ये है कि ये बहुत बड़ी जो है वो फतह है। अच्छा, फिर आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि बड़ी गलत बात कही है, हकीकत में ये बहुत बड़ी फतह है, इसका क्या मतलब है? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस बात का कितना यकीन था, इसकी सदाकत जो थी इस पर आपका कितना ईमान था। फिर आप इस सिलसिले में आप ये बात भी याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सुलह हुदैबिया के बाद जब आप मदीना वापस आ रहे थे तो सहाबा के दिलों में जब बहुत रंज था कि हम उमरा नहीं कर सके, और उस वक्त जब सूरत फतह नाजिल हुई तो आपका ये कहना कि मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है, जब आपने इन्ना फतहना लका फतह मुबीना और मजीद आगे के लियग़फिरा लकल्लाहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख्खर पढ़कर सुनाई, तो सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, इसमें तो आपके बारे में फरमाया कि ऐसा ऐसा होगा, सवाल यह है कि हमारा क्या बनेगा, हमारे बारे में भी बताइए। तो इस पर मजीद फिर अगली आयत लियुदखिलल मोमिनीना वल मोमिनात आगे आपने जो है वो सुनाई। तो ये है आयात कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने फतहम मुबीना जो है उसको नाजिल कर दिया, उसको आपके लिए खोल दिया। और फतह मुबीना से मुराद क्या है? सुलह हुदैबिया। और इस सिलसिले में हमें सहाबा का बड़ा खूबसूरत ये बात भी पता चलती है कि बाज लोग जो है ना फतह मुबीना से मुराद, फतह से मुराद जैसे फतह मक्का को लेते हैं, लेकिन सहाबा क्या कहते थे कि फतह मुबीन से मुराद जो है ये सुलह हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया ही ने ऐसे हालात पैदा किए कि जिसकी वजह से फतह मक्का जो थी वो हो सकी। और इस सिलसिले में जो है हमें कैसे इस बात का जो है पता चलता है कि इसने ऐसे हालात जो है वो पेश कर दिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम तो फतह फतह मक्का को शुमार करते हो और हम तो सुलह हुदैबिया ही को फतह समझते हैं। इसी तरह हजरत जाबिर रजी अल्लाह नो और बरा बिन आजिब भी कहा करते थे कि हम तो बैते रिजवान को जो थे वो फतह समझते हैं। और फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं कि हमने आपको खुली फतह अता कर दी, और इसके बाद कि हमने आपको खुली फतह अता कर दी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार बातें कही जा रही हैं। पहली बात क्या है? लियग़फिरा, ताकि वो बख्श दे, लका तेरे लिए, अल्लाहु अल्लाह, ताकि अल्लाह आपको बख्श दे, मा तकद्दमा मिन ज़म्बिका व मा ताखर, जो पहले हुए मिन ज़म्बिका तेरे गुनाह से, व मा ताखर और जो पिछले हैं, है ना। तकद्दम का मतलब क्या है? ये जो पहले हुआ, आगे गुजरा, जो पहले हो चुका। और फिर दूसरा लफ्ज क्या है? ज़म का। और ज़म जो है इसके मानी क्या होते हैं? जम के मानी जो हैं आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, हर उस बात फेल को कहते हैं जिसका अंजाम बुरा हो। मुफ़रदातुल कुरान के मुताबिक हर वो काम जिसके नतीजे में मुजम्मत हो, ये फिकुल लुगत जो है ना, फिकाउल लुगत उसके बाद उस वो ये बताती है कि हर वो काम जिसका नतीजा बुरा हो। एक ही बात है जिसका अंजाम बुरा हो या नतीजा बुरा हो। और ये बड़ा आम लफ्ज है, छोटी छोटी लग्जिशों के लिए भी जम इस्तेमाल किया जाता है और बड़े बड़े गुनाहों के लिए भी। और सबसे बड़ा गुनाह जो है कत्ले नाहक है, उसके लिए भी कुरान में यही लफ्ज आया है ना। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वलहुम अलैया ज़म्बुन फाखाफ वन यक्तुलून, तो ज़म कहते हैं कत्ल जो किया था कि मेरे ऊपर उनका एक गुनाह भी है और मुझे डर है कि मुझे मार ही ना डाले। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िन्ता लहुम, अल्लाह आपको माफ फरमा दे, आपने इन मुनाफिकों को जिहाद से रुख्सत की इजाजत दे दी। तो अब ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़म क्या था इस तरह की बात कि आपका इजाजत दे देना? क्योंकि ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ज़म से माफी की बात है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा नहीं है कि कोई जाहिरी तौर पर बकायदा कोई गुनाह या गलती हुई थी, बल्कि इस आयत में ज़म से मुराद जैसे तदबीरी अमूर में बाज इज्तिहादी गलतियां हो जाती हैं जो बशरियत का तकाजा है। और मसलन जैसे वही कि गजवाए तबूक के मौके पर आपने जो है वो बहुत से लोगों को इजाजत दे दी थी, जो भी मुनाफिक आकर आपके सामने उजर पेश करता था कि हम ये मसला है ये मसला है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत ही थी कि आप नरमी करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, तो आप जो थे वो माफ करते जा रहे थे। तो यहाँ पे जिन कोताहियों से दरगुजर करने की बात हो रही है, और वो कौन सी कोताहियां हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे पिछले तकरीबन 19 साल से मुसलमानों की क्यादत कर रहे थे, तो अगर इस दौरान कोई छोटी मोटी कमजोरी या कोताही जो है वो आपसे हुई है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया कि ये सारी कमजोरियां और कोताहियां जो हैं अपने फजल से जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है वो उनको माफ कर दिया। तो ये फतह मुबीना, सुलह हुदैबिया का जो मिलना है, ये क्या है कि ये दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इनाम है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या इनाम जो थे वो अता किए, नंबर एक कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह जो हैं उनको माफ कर दिया जाए, सारी खताएं जो हैं वो माफ कर दी जाएं, और अल्लाह ताला से बढ़कर फिर माफ करने वाला और कौन है। और वैसे भी जो है ये बात भी आप याद रखिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तर्ज अमल कैसा था, आप कौन थे, आप जो थे पैगंबर थे, है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात पर जो थे सरे अतात खम करने वाले थे। फिर तीसरी बात क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इनका मर्तबा बहुत ऊंचा था, अल्लाह ताला ने आपको बड़े खुसूसी इनामात से जो है वो नवाजा। तो जो खुसूसी इनामात से नवाजा उनमें से पहली चीज जो है वो गुफराने जनूब है, क्योंकि बाज औकात जो मर्तबा रफी होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है कि कोई भी कोताही ना हो। जैसे अल्लाह ताला ने जो है अपने अंबिया की क्या शान है कि उनका बड़ा ऊंचा मर्तबा है, बड़ा ऊंचा मकाम है, और उस ऊंचे मकाम के लिए क्या है कि जर्रा बराबर भी किसी किस्म की कोई कोताही ना हुई हो। और सहाबा रसूल अल्लाह से क्या कहते थे, क्योंकि आप रात रात भर खड़े होते, आप तहज्जुद पढ़ते, आपके पांव सूज जाते, तो साहबा कहते थे कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली खताएं माफ कर चुका है। फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा, है ना। तो असल बात क्या है कि जो मोमिन होता है ना वो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाला होता है, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की बहुत अताअत करने वाला। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नेकियों में सबसे बढ़कर थे, सबसे आगे थे। तो ये कहना पहला इनाम जो रसूल अल्लाह को सुनाया गया कि ये जो हमने आपको फतह सुलह हुदैबिया दी है ताकि वो बख्श दे तेरे लिए तेरे वो तमाम गुनाह जो अगले भी हैं और पिछले भी। अब दूसरा इनाम जो खुसूसी इनाम है वो क्या है कि वह युतिम नेमतहू, और वो पूरी कर दे अपनी नेमत, अलैका तेरे ऊपर। तो अब यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नेमत पूरी की जा रही है तो इस नेमत से क्या मुराद है, कहा जा रहा है ताकि वो अपनी नेमत को अपने एहसान को तुझ पर पूरा कर दे। और आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत से एहसानात किए हैं। और एहसान क्या है कि दीन को गालिब कर दिया जाए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया और आपको जो दीन देकर भेजा गया तो उस दीन को अल्लाह ताला गालिब कर दे, फतह अता करें, नेमत मुकम्मल करना, फतह और गलबा अता करना। तो एक इसके मानी ये हैं। दूसरे मानी ये हैं कि मगफिरत और हदायत पर इस्तकामत, मगफिरत और हदायत पर इस्तकामत, यही इतमाम नेमत है, ये भी राय है कि अल्लाह ताला जो है आपको क्या करें कि मजीद जो है वो अपने एहसानात आप पर जो है वो पूरे करें। फिर इसके बाद जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और इनाम बताया जा रहा है, और वो इनाम जो है वो क्या है, फरमाया वह यह दिया का सिरात मुस्तकीमा, और हदायत दे तुझे सीधे रास्ते की। तो ये इनाम जो है ये तीसरा इनाम है। मानी क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदायत पर आपको इस्तकामत रहेगी, आप हमेशा सीधे रास्ते पर रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि लोग भी जौक दर जौक इस्लाम के रास्ते पर चले आएंगे। वयहदिया का सिरातम मुस्तकीमा, आपको हदायत के आला से आला दर्जे पर नवाजे। अब आप देख लें कि सुलह हुदैबिया की शरायत मुसलमानों के लिए कितनी बेचैनी बेसुकूनी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपके दिल में कितना इत्मीनान था, आपके दिल में कितना सुकून था। तो ये आयत भी इस बात की दलील है ना, कि पैगंबर जो है उसका मकाम क्या होता है, उसका अंदाज क्या होता है, और वो किस तरह से अल्लाह के फैसले जो है वो उसको कबूल करता है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए ये इनाम था कि वयहदिया का सिरातम मुस्तकीमा, और हदायत दे तुझे सीधे रास्ते की। गोया के इस्तकामत, आप सारी जिंदगी जो है वो सिराते मुस्तकीम पर जो है वो चले चलते रहें, और उस पर जो है वो जमे रहें। फिर इसके बाद आप देखिए कि चौथी जो अल्लाह की नेमत है, जो खुसूसी फजल था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का, उसका जिक्र है, वयन शुरू का, और वो मदद करे तेरी, कौन, अल्लाह अल्लाह, और वो अल्लाह कैसा है, नसरन अजीजा। तो अल्लाह मदद करेगा, नसरन मदद करना, और मदद करने वाला कैसा है, अजीजा, जबरदस्त है। तो अल्लाह ताला जो है वो आम हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह की हस्ती जो है वो गालिब है। अल्लाह कैसा है, जबरदस्त है। और आप ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना तारुफ करवा रहे हैं कि अल्लाह ताके तेरी मदद करे। और आप जरा फिर वही सुलह हुदैबिया के हालात पर गौर करें कि मैदान में मुसलमान हैं, निहत्ते हैं, काफिर अंदर उमरे के लिए मक्का में आने भी नहीं दे रहे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताके अल्लाह मदद करे तेरी, मुसलमान वापस जा रहे हैं, तो ये सूरत नाजिल हुई है। तो बाज़ोकात जिंदगी में बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि लगता है कि शिकस्त खा ली है, कि मैंने सच बोलकर शिकस्त खा ली है। और इमाम यूसुफ इस्लाही साहब ने एक दफा एक वाकया सुनाया था कि हिंदुस्तान में किसी जगह हिंदुओं में मुसलमानों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई किस बात पर थी कि मुसलमान कहते थे कि ये जो जगह है ये पहले मस्जिद थी और ये मस्जिद बनेगी, और हिंदू कहते थे ये मंदिर था और ये मंदिर बनेगा। और अब इसने मुकदमा जो था वो अदालत में चला गया, और जब अदालत में मुकदमा था तो उस वक्त जो है वो जो हिंदू थे, हिंदू ने ना किसी मस्जिद के इमाम के बारे में कहा कि वो इमाम जो भी गवाही दे देना हम उसको मानने को तैयार हैं। कहते हैं कि उसको, उस इमाम के किरदार, उसकी सच्चाई को सब मानते थे, हत्ता के काफिर भी। और हिंदुओं ने कहा कि हम उसको अपना वकील बना लेते हैं, मुसलमान तो बनाते ही, लेकिन उन्होंने भी कहा। और उस शख्स के पास अब जज का पैगाम गया कि आप आके गवाही दें, तो उस शख्स ने पता क्या कहा, उसने कहा कि मैंने तो कसम खा ली है कि मैं इनका मुंह नहीं देखूंगा, और जज था काफिर, कि मैं किसी काफिर जो है वो इसका मुंह नहीं देखूंगा, या उसके सामने जाकर कोई बात नहीं करूंगा, मतलब मैंने इसके सामने पेश किसी के सामने नहीं होना। तो पता है जज ने क्या कहा था, जज ने कहा था कि मेरी तरफ पीट करके भी गवाही दे दे, मतलब एक मुकदमा जो है उसका फैसला ही करना है ना, मेरा चेहरा मत देखे, बस वो जो है गवाही दे दे। हिंदुओं ने कहा, जज ने कहा, और फिर उसने आकर ये गवाही दी कि जो है वो पहले वो जगह मस्जिद नहीं थी, मंदिर ही था। सच्ची बात यही है। अब मुकदमा जो था वो हिंदुओं के हक में हो गया, और बजाहिर क्या था कि मुसलमान हार गए, लेकिन वो हिंदू जो था ना उसने बाहर जाकर मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि मैं ऐसे इस्लाम पर जो है मैं उस जो है वो सदके जाता हूँ और मैं कुर्बान, और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो जिंदगी में बहुत से औकात ऐसे होते हैं, लम्हात और वाकयात ऐसे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सच जो है ना वो उसकी नीच हो गई है, सच जो है शिकस्त खा गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जाहिरी तौर पर लगता है लेकिन वहां से ही उसकी जो है ना वो जीत शुरू हो जाती है। अब जाहिरी तौर पर जो है ये महसूस हुआ कि मुसलमान उम्रे के बगैर आ रहे हैं, लेकिन आप सोचे कि आइंदा के लिए वो शरायत क्या थी। कहते हैं कि इन शरायत के तय होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये हुआ कि आपने इर्द गिर्द के बहुत से इलाकों में जो है वो वफूद भेजे इस्लाम के लिए, इस्लाम के हक में, क्योंकि आपको अब ये खतरा नहीं रहा था कि जंग होगी, क्योंकि जंग का दो बड़े फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो चुका था। आपने वफूद भेजे, आपने खतूत भेजे, और मुसलमानों का किरदार, अमन, मदीना की रियासत, आपने इन चीजों पे बहुत जो है वो जोर दिया। तो असल बात क्या है, वयंसुरुकल्लाहु नसरन अजीजा, और वो मदद करे तेरी अल्लाह, मदद जबरदस्त, अजीज जबरदस्त के मानी में भी है, इज्जत के मानी में भी है, गलबे के मानी में भी है। और असल बात क्या है कि बजाहिर हालात बड़े तंग नजर आते हैं, लेकिन याद रखिए जहां रात बहुत गहरी होती है वहीं सुबह की इब्तदा होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का अलैह का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि अल अमरु इजा दाका इत्तसा, अल अमरु के मामला जो है इजा दाका, दाका का रूप क्या है, दाद या काफ, दीक से ना, कि जब मामला तंग हो जाता है, इंतहाई तंग मुश्किल हो जाता है, तो होता क्या है, इत्तसा वुस्सत से है, तो वहीं से वुस्सत पैदा होती है। जब कोई मुसीबत परेशानी हद से गुजरने लगती है, वही वो वक्त होता है कि फिर अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा कर देते हैं। तो ये है बात कि सुलह हुदैबिया का वाकया कैसा वाकया था कि अल्लाह ताला ने जो है वो नसर अजीज जो है उसका जो है वो वादा किया। फतह मुबीन का तस्करा करके नसर अजीज और गुफरान अजीम का वादा, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत बड़ी फतह थी। आप इस मौके पर एक बात याद रखिएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जा रहे थे अपने सहाबा को लिए हुए, तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब आप जा रहे थे तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जो थी ना वो चलने की बजाय ऊंटनी रास्ते में बैठ गई, उसने जो था चलना छोड़ दिया। अब रास्ते में जब बैठ गई तो सहाबा उसको कचोके दे रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, और वो सहाबा चाह रहे हैं कि आगे चले क्योंकि उम्रे की तरफ जा रहे थे ना। अब क्या हुआ कि ऊंटनी जो है जो नाका थी आपकी चलने की बजाय जो है वो बैठ गई। तो आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस मौके पर जो है वो लोगों ने क्या कहा और रसूल अल्लाह ने क्या कहा। लोगों ने कहा कसवा बिगड़ गई, उसका नाम कसवा था। आपने फरमाया कसवा का कसूर नहीं, ना उसकी ऐसी आदत है, बल्कि उसको तो उस जात ने रोक दिया है जिसने असहाबे फील को रोक दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाजा हो गया कि जो वाकया ख्वाब में दिखाया गया उसका ये वक्त नहीं है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बजाय इसके कि आप भी उस वक्त जो है वो परेशान होते या कोई आप ऐसी बात करते, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस मौके पर सहाबा के सामने ये बात रखी कि इस ऊंटनी को उस जात ने रोका है जिस जात ने असहाबे फील को रोक दिया था। तो आप देख लें के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना और सहाबा का जो है वो परेशान होना, तो इससे भी हमारे सामने फिर क्या बात आती है कि जानवर भी अल्लाह की अताअत करते हैं ना। आपको पता है ना हाथियों का जो सबसे बड़ा सरदार हाथी था असहाबुल फील के वाके में, वो हरम का रुख नहीं करता था, तीन तरफ चलता था, महमूद उसका नाम था, तीन तरफ चलता था, बस सिर्फ उस तरफ नहीं चलता था जो हरम की तरफ था, जब उस तरफ रुख करते हैं तो बैठ जाता है, कितना भी मारो तो चलता नहीं था, जब उसको उठा के दाएं बाएं और पीछे की तरफ करते तो फिर वो चलने लगता था। तो अब यहाँ पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है वो नहीं चल रही और वो बैठ गई है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस मौके पर अपने सहाबा को ये बात बताते हैं कि इसको जो है वो अल्लाह की जात ने जो है वो रोक दिया है, जिसने के असाबे फील को जो था वो रोक दिया था। फिर फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फी कुलूबिल मुमिनीना, और वही तो है जिसने नाजिल की सकीना, सकना से है ना सीन काफ नून, और सुकून के माने क्या होते हैं, ठहराओ करार, वही जात तो है जिसने उतारी, अब उतरी नहीं खुद से बल्कि जिसने उतारी सकीना कहां पे, फी कुलूबिल मुमिनीना मोमिनों के दिलों में। आप एक बात याद रखिएगा, कदमों को सबात तब मिलता है जब दिलों को करार आ जाए, जब दिलों के अंदर खलश बेचैनी इस्तराब शक किसी कैफियत हो तो अमल के मैदान में कदमों को सबात नहीं मिलता। जब दिल किसी चीज की सदाकत पर ठहर जाते हैं ना, उनको एक सुकून और ठहराव मिल जाता है, तो फिर जो है वो पूरा जिस्म हत्ता के इंसान के जो कदम होते हैं वो भी जो है फिर उनको एक सबात मिल जाता है, फिर वो भी इंसान का जो है वो साथ देने लगते हैं, फिर इंसान का जिस्म जो है वो पीछे नहीं रहता। तो यहां पर भी क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने ये जो फतह मुबीन नाजिल की, कैसे सुलह हुदैबिया का जो वाकया पेश आया, तो दरअसल ये क्या था, ये एक सकीना थी, और सकीना जो थी कहां पे थी, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि फी कल्बिन नबी, नहीं, फी कुलूबिल मोमिनीना मोमिनों के दिलों में, मोमिनों के दिलों में जो है वो सकीना नाजिल कर दी। अब सहाबा का ये पूछना कि आपके लिए तो है ये सारा कुछ, जैसे आयत नंबर 1, 2 और 3, हमारे लिए क्या है, तो आपने ये आगे सुनाया उनको कि अल्लाह ताला ने इसको सकीना बनाकर नाजिल किया है, और इसलिए लियज़दादू ताकि ज्यादा हो, ताकि बढ़े, क्या चीज बढ़े, ईमानन ईमान, मा ईमानहिम इनके ईमान के साथ। तो अल्लाह ताला ने जो है वो सकीना को इसलिए नाजिल किया है कि ईमान के साथ जो है मुसलमानों का ईमान और बढ़े। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो भी हालात और वाकयात होते हैं उनके मुताबिक या तो ईमान घटता है फिर या ईमान बढ़ता है। और यहां पर यह बात बताई जा रही है कि वादा नुसरत की दलील ये है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों में ये हौसला पैदा कर दिया। हौसला कैसे पैदा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ख्वाब सुनाया, और ख्वाब सुनते ही सहाबा जो थे बड़े हौसले के साथ और दौलत ईमानी के साथ रसूल अल्लाह की रिफाकत के लिए जो है ना वो तैयार हो गए। क्यों कि उमरे का सफर कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर हालात बड़े खतरनाक हैं, और सहाबा का गैर मुसल्ला होकर आपके साथ जाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। तो ये वजह क्या थी, सहाबा का आपके साथ चल पड़ना, उमरे की तैयारी करना, ये दरअसल ईमान में बरकत थी, उनके ईमान में एक अजम और हौसला था, उनके ईमान में एक सकीनत थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिनों के दिल में सकीनत नाजिल कर दी ताकि और बड़े ईमान ईमान के साथ। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि आजमाइशें करते हैं और फिर जो ईमान है उसको बढ़ाते चले जाते हैं, ये है अल्लाह की शान। और फिर आप ये भी देखें, एक तो ये कि आप इसको इस मानी में ले सकती हैं कि मदीना से रवाना होना, दूसरा सुलह हुदैबिया के बाद सहाबा के दिल में सकीनत का आ जाना, सुलह हुदैबिया की शरायत के बाद मुसलमानों के दिल में एक सुकून और ईमान की सी कैफियत पैदा हो गई। तो ये था अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर किया। फिर साथ ही क्या फरमाया, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए हैं लश्कर आसमानों और जमीन के, जुंदी जुंद रूठ है और जुंदी उन वाहिद है और जुनूद जमा है और लश्कर हैं अल्लाह के लिए आसमानों के और जमीन के। तो यहाँ पे कौन से लश्कर मुराद हैं जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है? दरअसल यहाँ पर अल्लाह ताला जो है ये बात बताना चाहते हैं कि आजमाइशें जो आती हैं ना वो आती हैं ईमान का जायजा लेने के लिए। तो जब आजमाइशें आती हैं तो उस वक्त कुछ लोगों का ईमान घटता है और कुछ लोगों का ईमान जो है वो बढ़ता है। और जो लोग आजमाइशों में साबित कदम रहते हैं अल्लाह ताला उनको सकीना भी देते हैं, उनके ईमान को बढ़ाते हैं और ऐसे लश्करों से उनकी मदद करते हैं जो आम लोगों को नजर भी नहीं आते। वलिल्लाही जुनूदुस समावाती वल अर्द। तो अल्लाह हमेशा अपने रसूल की और अहले ईमान की मदद करते रहे हैं और मदद कैसे की है कि जमीन की तमाम कुवतें तमाम फौजें क्योंकि अल्लाह के तसर्रुफ में हैं तो अल्लाह उनको जो है कुफार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कुफार से इंतकाम लेते हैं। दूसरी बात क्या है, आसमान की तमाम फौजें और आसमान की तमाम कुवतें जो हैं वो अल्लाह ताला काफरों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। सूरत मोहम्मद की आयत 4 को भी आप इस के दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं कि आसमानों और जमीन के सभी लश्कर अल्लाह ही के लिए हैं। तो असल बात क्या है कि अल्लाह ताला की जात है कि जब मोमिन सरे तस्लीम खम कर देते हैं तो अल्लाह कैसे मदद करता है कि कुछ भी तरीके और असबाब पैदा करता है। एक तरफ मुसलमानों की आजमाइश हो रही होती है, एक तरफ काफरों की आजमाइश हो रही होती है। अब आप देखें कि उमरा न करने देना आजमाइश, अब इसमें जो है अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक और तरीका इख्तियार किया जिससे जिसमें खुफिया तौर पर काफरों की ताकत जो है ना उसको कुचल दिया जाए। तो सुलह हुदैबिया क्या था? सुलह हुदैबिया जाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि जो है वो मुसलमानों को शिकस्त है और काफरों को फतह है, लेकिन अगर आप इसके वाकये पर गौर करें तो क्या बात सामने आती है कि मुसलमानों की ये फतह है और काफरों की ये शिकस्त है, क्योंकि मुसलमानों को ज्यादा मौका मिला इस्लाम को फैलाने का। नंबर वन। नंबर दो, वो जो शराइत थी कि मुसलमान जो हैं जो चले जाएंगे मदीना उनको वापस भेजा जाएगा, तो वापस भेजा गया। अब आता है कि तकरीबन 70 के लोग वहां पे जमा हो गए थे जो न्यू मुस्लिम थे जो इस्लाम ला ला कर जो फिर मदीना नहीं जाते थे, उनको पता था कि जाना है तो अबू बसीर के पास और अबू जंदल के पास, 70 के करीब मुसलमान और पूरी एक पनाहगाह। और वो फिर जो इर्द गिर्द काफिरों के काफले जाते थे ना वो उनको उन पर हमला करते उनको तंग करते, तो वो तो अपनी हिफाजत खुद कर रहे थे और काफिर उनको तंग करते थे। तो अब जो है खुद काफिरों ने दरख्वास्त की कि आप जो है ना इनको अब अपने पास बुला लें। तो ये क्या था? ये भी तो अल्लाह की गैबी मदद थी ना। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह इल्म रखने वाला और हिकमत वाला। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो जो फैसले करती है वो उसके फैसले बड़े हकीमाना फैसले हैं, उसके फैसले जो हैं बड़े ही इल्म वाले फैसले हैं। अब आम जो सहाबा थे उनको नहीं पता था कि सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो है वो कैसे मुसलमानों को जो है वो फतह मिलेगी। तो ये इल्म किसके पास था? अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह सिर्फ सामने वाली चीज ही नहीं दूर वाली चीज भी जानता है ना। तहतु सुरा, जमीन के अंदर नीचे जो चीजें हैं अल्लाह को वो भी पता है। अब एक तरफ अबू जंदल है मजलूमियत की तस्वीर बने हुए, और अगर उस वक्त मुसलमान जो थे वो तैश में आकर नज्म जब्त को तोड़ देते या रसूल अल्लाह का कहना ना मानते, दिल बड़े गमजदा हैं, दिल बड़े जख्मी जख्मी हैं, लेकिन सहाबा ने किया क्या? की तो रसूल अल्लाह की अतात ही ना। तो उस वक्त जब उन्होंने सबर से काम लिया तो अल्लाह ताला ने जो है उनके ईमान को बढ़ा दिया और ऐसे लश्करों से उनकी मदद की जिसके नतीजे में जो है मुसलमानों के लिए कामयाबी के दरवाजे खुलते ही चले गए। अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। इससे क्या बात पता चलती है اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے، ہمیشہ فتح انسان کو ہوتی ہے، مسلمان کو ہوتی ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ظاہری طور پر حالات مخالف ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، کیا غم ہے اگر وہ ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ جب بھی آزمائشیں آئیں تو آزمائشوں کے آنے پر، یہ ایک سوال ہے جو آپ نوٹ کر لیں کہ آزمائش جب آتی ہے تو فیصلہ کن بات کیا ہوتی ہے، فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی پیروی میں ایک مسلمان اپنی جان، مال، جذبات، خواہشات، اوقات، آسائشیں اور مفادات، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. ایک طرف ہے اللہ اور اللہ کے دین کی پیروی، اور اس میں پھر قرآن پر عمل، رسول کی اطاعت، سب چیزیں آ جاتی ہیں، کہ اس کے لیے انسان ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اگر وہ قربانی اختیار کرتا ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایمان کو ترقی ہوتی ہے. اگر منہ موڑ لیتا ہے تو ایمان ٹھٹھر کر رہ جاتا ہے، بلکہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. یہ بات بہت اہم ہے. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب صحابہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، اللہ نے ان پر سکینہ کو نازل کیا، اور اللہ نے ان کو ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو بظاہر نظر نہیں آتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اسی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے بھی اور زمین کے، کہ پیچھے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جیسے انبیاء اور ان کے ساتھی، اللہ نے مدد کی ہے نا ان کی. اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی غزوہ بدر میں، احد میں، عذاب میں، قندق میں، سب میں مدد کی اللہ تعالیٰ نے. اور سب سے بڑی مدد کہ مکہ سے مدینہ نکل کر آگے، تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرتا ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ لام، لام کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے. تاکید کے لیے نہیں، یہ لام علت ہے، لِيُدْخِلَ، تاکہ وہ داخل کر دے، مضارع مجھول ہے، تاکہ وہ داخل کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ داخل کرے کن لوگوں کو، داخل کرے پیچھے قلوب المومنین کی بات آپ نے پڑھی تھی نا، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا لِيَزْدَادُوا ایمان ایمانا مع ایمانہم. تو یہ جو فکرہ ہے نا لِيَزْدَادُوا ایمان مع ایمانہم، تو ایمان میں اضافہ ہونا کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. آزمائش میں جب انسان اپنے ہر طرح کے مفاد کی، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اور جب نور باطن میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکی کے راہیں کھولتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے راہیں کھولے گا. کیا؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کو. عام طور پہ مرد جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، مومنون یا مومنین، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں اور سارے مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو داخل کرے، کہاں؟ جنات، جنتوں میں. تجری بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے کیا چیزیں بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں. تو اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہیں. تو اللہ تعالی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جنت کا. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جس کے نیچے سے جنت کی سب نہریں جو ہیں وہ چلتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، چلتی ہیں، جاری ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ مومنوں کو ایسی جنت میں داخل کر دے گا کہ اس کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہوں گی. جنات تجری من تحتی حل انہارو، اور آپ نہروں کا ذکر جو ہے وہ پیچھے بھی پڑ چکی ہیں کہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، और शराब की नहर और पानी, है ना, ऐसा पानी जो मुसफा पाक साफ सुथरा। तो आप पढ़ चुकी हैं कि नहरें मुख्तलिफ तरह की हैं और नहरों के प्याले भी सोने के बने हुए, चांदी के बने, उसकी मट्टी मुश्क की मट्टी है, बड़ी खूबसूरत है वो नहरें जो अल्लाह ने बनाई हैं। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने को इसमें, कहाँ हमेशा रहेंगे, जन्नातिन, जन्नतों में हमेशा रहेंगे। दुनिया में तो यही धड़का लगा रहता है, यहाँ रहें कि वहां रहें, और ये घर पता नहीं हमेशा रहेगा कि नहीं, जॉब हमेशा मिलेगी कि नहीं। कल एक खातून से मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि असल में मैंने अपनी केयर नहीं की ना, तो मेरे चेहरे पे रिंकल आने लगे, तो फिर मुझे भी एक क्रीम देने लगी, कहने लगी कि आप इसको लगाएं तो फिर रिंकल नहीं आते, चेहरे की जिस्म की केयर करनी चाहिए ना। तो मैं इस बात पे सोच रही थी, मैं ये बात नहीं करी क्रीम आप लगाएं कि ना लगाएं, है ना, ये तो हर एक का अपना इंफरादी मामला है कि उसके पास वक्त कितना है, पैसे कितने हैं। और लेकिन एक बात मैं सोच रही थी, और वो बात क्या, कि इंसान ये चाहता है हमेशा जवान रहे, हमेशा खूबसूरत रहे, हमेशा दुनिया में रहे, कितनी भी उम्र ज्यादा हो जाए, इंसान ना मरना चाहता है, ना बूढ़ा होना चाहता है, ना बीमार होना चाहता है, और इसी तरह वो खूबसूरत चाहता है। बदसूरत, बदसूरत तो अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, हर शख्स बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो आंखें चाहिए जो उस अल्लाह के हुस्न को महसूस करें, और वो दिल चाहिए जो कि हुस्न से भरा हुआ हो। तो असल में जब दिल खूबसूरत होते हैं और आंखें खूबसूरत होती हैं, हर चीज कायनात में खूबसूरत नजर आती है। और जब दिल न शुक्रे होते हैं और आंखें न शुक्री होती हैं, कुफराने नेमत करती हैं, तो फिर बहुत खूबसूरत दुल्हनों में भी लोग आकर जो है वो ऐब और नक्स निकालना शुरू कर देते हैं, बहुत खूबसूरत जवानों में भी और खुद अपनी जात में। बहरहाल मुझे कुरान की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि खालिदीन फीहा, हमेशा रहने को इनमें, जवान होंगे, खूबसूरत होंगे, हमेशा रहेंगे, वहां से निकालने का धड़का नहीं होगा, खदशा नहीं होगा। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जॉब ही नहीं है, कुछ लोगों को ये खतरा है कि पता नहीं यहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और भी बहुत से मसाइल। फिर अल्लाह ताला और क्या इनामात देगा, आप देखें कि ये एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात का जिक्र है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कुल मोमिन और मोमिनात, जिसमें रसूल अल्लाह भी और आम मोमिनीन भी, और इनामात भी दो तरह के हैं, एक दुनिया से जिनका ताल्लुक है, दूसरा आखिरत से मुतल्लिक है। वयुकफिर अनहुम सय्यातिहिम, और वो दूर कर दे इनसे इनकी बुराइयां। वैसे तो कफरा के मानी होते हैं ना पर्दा डाल देना, हकीकत पर पर्दा डालना, किसान को कहते हैं कि बीज को मट्टी के अंदर छुपा देता है, रात को कहते हैं काफिरतुन, कि वो क्या करती है रात के दिन की रोशनी को छुपा देती है। लेकिन कफरा, उससे फेल मजारे का सीगा है यु कफिरा, और आगे अन भी आ गया, अन का सिला है, तो मानी ये है दूर कर दे, मिटा दे, ताकि अल्लाह ताला जो है क्या करे, दूर कर दे, हटा दे उनसे, मोमिनीन से क्या, सैयाते हैं इनकी बुराइयां। सैयात उनकी जमा है सैयात, और इसके मानी होते हैं गुनाह, और जो भी इंसान जो है वो गलतियां करता है तो उसके लिए सैयात का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह माफ कर देगा। तो जन्नत का सौदा खसारे का सौदा नहीं है, जन्नत का सौदा ये वो सौदा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वकान ज़ालिका इंदल्लाही फौज़न अज़ीमा, ये है अल्लाह के नजदीक कामयाबी बड़ी। तो जिस कामयाबी को अल्लाह कह रहे हैं फौज़न अज़ीमा, और कभी कहते हैं फतह मुबीना, और कभी कहते हैं सिरातम मुस्तकीमा, और कभी कहते हैं लयजदादू ईमानम मा ईमानहिम, और फिर ये कहना वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तो मेरी बहनों आप ही बताइए कि क्या फिर कोई शक भी हो सकता है, कोई तरद्दुद हो सकता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले सहाबा और सहाबियात जो थे, बड़ा खूबसूरत था उनका ईमान, जगमग जगमग करता हुआ, बड़ा मजबूत था उनका ईमान, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था उनका ईमान, बड़े नडर थे और बड़े बहादुर थे, और बड़े खूबसूरती से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो थे वो साथ देने वाले थे। तो दरअसल ईमान और इस्लाम का रास्ता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का रास्ता जन्नत का रास्ता है, और ईमान के नतीजे में जन्नत मिलेगी। और जन्नत की तारीफ नंबर एक के उसके नीचे नहरें बहती हैं, नंबर दो ये हमेशा की है, नंबर तीन जन्नती जो हैं मोमिन और मोमिनात अल्लाह इनके गुनाह उनसे माफ कर देगा। और फिर अल्लाह ताला का ये कहना वकान ज़ालिका इंदल्लाही फौज़न अज़ीमा, और है ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी। आम इंसान समझे या ना समझे, अल्लाह कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है। तो जन्नत की तैयारी और जन्नत का शौक और सच्चा ईमान, ये क्या है, ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। यही लोग मुफ्लिहून हैं, इनके लिए खसारे का जरा बराबर भी कोई भी मामला नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रोह है उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो युअज्जिबा, ताकि वो अजाब दे किसको, अल मुनाफिकीना, मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती, और मुनाफिक औरतों को। अब आप देख लें कि यहां पे निफाक इख्तियार करने वालों का अलग जिक्र किया जा रहा है। अब एक तरफ ईमान वालों का इम्तहान था, इम्तहान का जो दूसरा रुख है उसमें कौन लोग हैं, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। क्योंकि इस मौके पर मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो थी वो क्या कर रही थी, कि वो लोग नहीं समझते थे कि जाना चाहिए उम्रे के लिए, और मुनाफिक जो थे उन्होंने जो था अपने निफाक की बिना पर बहुत सी ऐसे बातें की कि कैसे जाया जा सकता है, और ये तो जो जाना जो है गोया कि मौत के मुंह में जाना है। आप आगे अभी इसकी तफसील पढ़ेंगी। इसी तरह जो मुशरिक लोग थे, वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती, मुशरिक मर्द भी और मुशरिक औरतें भी, इनके लिए भी बड़ी तबाही थी, शिर्क करने वाले। तो इनकी अल्लाह ताला कैसे बात बता रहे हैं, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों के बारे में एक बात है, क्या कही, अज़्ज़ानीना बिल्लाही ज़न्न सऊ, अज़्ज़ानीना, है ना। तो आप देख लें ये मद्दे लाजिम भी है और ये मुबालगे का सीगा है, और क्या मानी है इसके, गुमान करने वाले, क्या मानी है, बदगुमानियां रखने वाले, एक गुमान नहीं बल्कि उन्होंने बदगुमानियां की। और इसके मानी ये हैं कि अल्लाह के अहकामात के बारे में मुतहम करते हैं। मुतहम करने का मानी क्या है, जो है वो तोहमत लगाना। मानी ये है कि उनका ये गुमान था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है इनको फतह नहीं होगी, इनको शिकस्त होगी। दूसरे इसके मानी क्या है कि उनका ये ख्याल था कि ये तो कत्ल हो जाएंगे, जा रहे हैं ना ये, जा रहे हैं मौत के मुंह में, देखना ये कत्ल हो जाएंगे। ज़न्नी नबिल्लाही ज़न्न सऊ, तो ये मुनाफिकीन की बदगुमानियों के बारे में इशारा है, और मुशरिकीन की जो है वो बदगुमानियों के बारे में। मुशरिकीन भी यही समझ रहे थे ना कि बस अब तो खत्म। और इसी बात को आप आगे भी आयत नंबर 12 में भी पढ़ेंगी एक और अंदाज में। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलैहिम दायरतु सौ, इन्हीं पर है दायरा बुरा। दायरा जो है दौर से है, और दायरा कैसे होता है, सर्कल होता है ना, सर्कल यानी चारों तरफ से जो इन पर गर्दिश है कैसी है, बुरी। तो मानी ये है कि उनका कहना ये था, वो ये समझते थे कि दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेर है। मानी ये है कि मुसलमानों के दिन ही जो है वो बुरे दिन है। सौ, सौ के एक मानी ये है कि मुसलमानों पर हलाकत के दिन है, दूसरे मानी ये है कि मुसलमानों पर अजाब आकर रहेगा, और तीसरे मानी क्या है, तीसरे मानी ये है कि बस मुसलमान जो है ये तो खत्म ही होकर रहने वाले हैं। तो तरह तरह से दायरा तो सौ, ये एक असल में मुहावरा है, और इसके मानी ये है कि जैसे किसी पर बुरे दिन आ जाए, तो इनके ऊपर बुरे दिन आ गए कि ये लोग जो हैं खुद मदीना से निकल कर जो है वो मौत के मुंह की तरफ जो है इन्होंने सफर करना शुरू कर दिया। तो इससे ज्यादा बुरे दिन इनके लिए जो है वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये बात बताई जा रही है कि इन पर जो है वो बड़े बुरे दिन आ गए। فغضب اللہ علیہم اور غصے ہوا اللہ ان پر, کن پر؟ دونوں کا پر, منافقوں پر بھی اور مشرکین پر, اور غضبناک ہوا اور غصے ہوا اور ناراض ہوا اللہ ان پر, ولعنہم اور لعنت کی ان پر. اب آپ دیکھیں کہ مزید آپ گنے کتنی باتیں بنتی ہیں. وعد لہم جہنم اور تیار کی ان کے لیے جہنم. عدا کے معنی کیا ہیں؟ جیسے پہلے سے سامان کی تیاری کر کے رکھنا نا, اہتمام سے تیاری. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. جو سزا ان کو دی جائے گی ایسی نہیں ہے کہ جب یہ جہنم میں آئیں گے تو پھر اس وقت تیار کیا جائے گا, نہیں. یہ ہیں ایسے لوگ کہ ان پر برا وقت آنے والا ہے, اور برا وقت کیسے ہے ان کے اوپر کہ دنیا ہی میں یہ ذلیل اور خوار ہوں گے, اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر لے گا, اور دنیا میں جانے سے بعد وعد لہم جہنم کہ ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر لیا گیا ہے. اور اللہ تعالی جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ ان کے لیے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ پیچھے آیت میں یہ پڑھی چکی ہیں وللہ جنود السماوات والارض, کہ آسمان اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے لیے ہے نا. تو یہ لوگ برائی کے پھیر میں خود آ گئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب سزا دینے کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے. وساءت مصیرا اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ. جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. دوبارہ وہی بات جو پیچھے بھی کہی. تو مطلب کیا ہے کہ اب یہ خود ہی جو ہے وہ اپنے پھیر میں آگے ہیں. جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گرتا ہے, جو خود کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود گڑے میں گر کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو انہوں نے تو صلح کی ہے یہ سمجھ کر کہ اسلام کو شکست دے دی جائے اور کفر غالب آ جائے, لیکن اصل بات کیا ہے؟ وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اے اللہ زبردست اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں یہ بڑے ہی بہترین فیصلے ہیں, اور ایک بات کو پھر دہرایا جانا جیسے دو دفعہ یہ کہا جا رہا ہے نا وللہ جنود السماوات والارض, تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اصل میں تکرار جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے, مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سزا دینا چاہوں تو میرے پاس بہت سے لشکر ہیں, فرشتے بھی ہیں اور ہوائیں بھی ہیں اور جو ہے وہ بارش بھی ہے, زمین سے پانی, مختلف طرح کے اللہ کے لشکر, آسمان اور زمین کی تمام طاقتوں کو اللہ جس کو بھی چاہے حکم دے. تو یہ اپنی تدبیروں سے اللہ کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے, کیونکہ اللہ عزیزن ہے حکیمہ اور اس کے فیصلے جو ہیں حکمت والے ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے فیصلے حکمت والے ہیں؟ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کے نفاق کی وجہ سے اور مشرکوں کو ان کے شرک کی وجہ سے فوراً ختم نہیں کر دیتا, بلکہ کیا ہے کہ ایک وقت دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا ہے, ان کا امتحان کرتا ہے, اور جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. تو اگر کسی کو سزا نہیں دی جا رہی, اگر کسی پر عذاب نہیں آ رہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے سزا دینے پر, بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے, لیکن اس کے فیصلے ہیں محکم مضبوط, پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا.